नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 9 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कोविड में प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत बनाने वाली डाइट क्या क्या ले। डाइट का मतलब खाना पानी। इस पोस्टर पर ना तो स्वास्थ्य मंत्रालय लिखा है, ना कोविड टास्क फोर्स लिखा है, ना ही ICMR लिखा है, बस माई गवर्नमेंट लिखा है। इस पोस्टर में 10 सलाहें हैं। इसमें से नंबर 2 सलाह यह है कि तनाव दूर करने के लिए 70% कोको युक्त डार्क चॉकलेट थोड़ी मात्रा में लें। जाहिर है कोविड होने पर तनाव से बचने के लिए ही डार्क चॉकलेट का सुझाव दिया जा रहा है। इस डार्क टाइम में थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट लेने की सलाह जितना डार्क कुछ नहीं हो सकता। अगर यह सही है तो मंत्री जी 2 काम कर सकते हैं। अस्पताल में कोविड के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उन्हें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट दिलवा दें, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिन गरीब लोगों को गेहूं और चावल दिया जा रहा है उसमें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट भी जोड़ दें। तनाव तो सबको होता है। एक मरीज है, उसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जाहिर है उसे काफी तनाव है, तो ऐसे वक्त में उसके लिए डार्क चॉकलेट ठीक रहेगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछ रहा हूं, कुछ भी कहीं से आ जा रहा है, जिस देश में लोगों के पास पैरासिटामोल खरीदने की क्षमता नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, उस देश के हेल्थ मंत्री थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने की सलाह दे रहे हैं, उस तनाव को दूर करने के लिए जो उनकी असफलताओं के कारण भी आया है। गाय गोबर और गौमूत्र पर जोर देने वाले मंत्री जी ने मिल्क चॉकलेट का जिक्र नहीं किया। चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट तो सस्ता होता है डार्क चॉकलेट से। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अगर कोविड से तनाव हो रहा है और डार्क चॉकलेट नहीं खरीद सकते हैं तो कोई भी चॉकलेट ले आए, रात के वक्त कमरे की बत्ती बुझा दें, अंधेरा हो जाएगा यानी डार्क हो जाएगा, फिर आप वो चॉकलेट खा लें, तो डार्क चॉकलेट खा लेंगे। फिर मंत्री जी को ट्विटर पर टैग कर दीजिए कि हमने डार्क चॉकलेट खा लिया, तनाव दूर नहीं हुआ। और पूछिए कि सर अब बताइए, पीएम केयर के घटिया और खराब वेंटिलेटर को लेकर छपी खबरों को पढ़ने से जो तनाव हो रहा है उसके लिए कौन सा केक खाना है? ऑक्सीजन ना मिलने पर हेजलनट केक अच्छा रहेगा या वेंटिलेटर ना मिलने पर वेनिला केक ठीक रहेगा? पूछ लीजिएगा उनसे, हेल्थ मंत्री से। जगह जगह से पीएम केयर फंड के तहत आए वेंटिलेटर के खराब निकलने की खबरें छपी हैं और लोगों की जाने भी गई हैं, ऐसी भी खबरें छपी हैं।
रोज वेंटिलेटर की कमी कारण देश दे विच पेशेंट मर रहे हैं, पंजाब दे विच पेशेंट मर रहे हैं, और 6 दर्जन के करीब वेंटिलेटर जिहड़े पीएम केयर दे विचों आए सी वो अनयूज पए है मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, और पंजाब गवर्नमेंट की इन्नी ना अहलियत है कि उन्होंने ठीक नहीं करा सके हजे तक। और ठीक कराओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, एक घरे बैठ के कुछ नहीं होना,
हमारे पास इस समय टोटल वेंटिलेटर जो ठीक हैं वो है अराउंड 42 बेड वेंटिलेटर्स, ठीक है जी, और कुल हमें 82 वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर योजना से आए थे। प्राइम मिनिस्टर योजना वाले जो हैं उसमें से लगभग 62 वेंटिलेटर्स वो खराब हैं, और वो शुरू से ही खराब हैं।
18 वेंटिलेटर बसंतपुर में पड़े हुए हैं, 11 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार के ही पड़े हुए हैं, जो उस समय भी ट्रायल होकर के हैंड ओवर लोगों ने नहीं लिया, और इस आधार पर जो कल मैंने मीटिंग लिया उसमें 18 वेंटिलेटर खराब स्थिति में पड़े हुए थे, जिला प्रशासन और कमिश्नर ने और प्रमुख सचिव तक मेरी बात हुई।
डार्क चॉकलेट के बाद अब आते हैं डार्क गोबर पर। इस अप्रैल में प्रिंट की खबर के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम विभागों की खिंचाई की है कि काउ साइंस पर रिसर्च में देरी आ रही है, मंजूरी नहीं दी जा रही है समय से। यही नहीं, 2016 में IIT दिल्ली को इसके लिए फंड दिया गया था, उसमें प्रगति न आने से निराशा जताई है। अगर 5 साल में गोबर और गौमूत्र के रिसर्च में इतनी देरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। बताइए, यहां लोग गाय और गोबर के नाम पर एक दूसरे की गर्दन पर सवार हैं और वहां सरकार में इससे जुड़े रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल रही है। अहमदाबाद के श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानम गौशाला की ये तस्वीरें हैं। जिस तरह मास्क ना पहनना कोविड के दौर में विज्ञान के विरुद्ध कदम है और उसके लिए फाइन है, यहां हम धर्म की राजनीति के आगे इतने कमजोर और डरपोक हो गए हैं कि गोबर के मामले में बोल नहीं पाते। अगर गोबर ही सही है और इससे कोरोना से सुरक्षा मिलती है तो फिर खुलकर कहना चाहिए, टीकाकरण बंद कर देना चाहिए। टीका केंद्रों पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन पर दो दो बाल्टी गोबर का घोल डाल देना चाहिए ताकि वे कोरोना से सुरक्षित हो जाएं। टीका भले कम हो लेकिन इस देश में गोबर और गोबर पर यकीन करने वाले कम नहीं है। वैसे पिछले साल तो गौमूत्र पार्टी हो रही थी कि इससे कोरोना भाग जाएगा। अब आते हैं टीका पर, वैक्सीन। इसकी कहानी भी कम डार्क नहीं है। दिल्ली में टीका ना होने के कारण कई जगहों पर टीका केंद्र बंद करने पड़े। दूसरे राज्यों से भी ऐसी ही खबरें हैं। लोगों को दूसरा डोज नहीं मिल रहा है जिन्हें पहला डोज दिया जा चुका है। उनसे तो कम से कम दूसरा डोज देने का वादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन जब दूसरी लहर से हालत बिगड़ी है तो 18 से 44 साल के लिए टीके की मंजूरी दे दी गई और उस टीके का पता नहीं। एक तरफ टीका होने के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि टीके के लिए जितने लोगों ने पंजीकरण कराए हैं उन्हीं के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। टीके पर बनी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सुझाव दिया है कि कोविशील्ड के मामले में दूसरा टीका 12 से 16 सप्ताह के अंतर पर लिया जा सकेगा, यानी 3 महीने के अंतर पर। दावा किया गया है कि वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब इसे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी का इंतजार है। दूसरा टीका लगाने वाले भटक रहे हैं यहां वहां। आज खबर आती है कि कोविशील्ड का दूसरा डोज पहला टीका लेने के 3 महीने बाद तक लिया जा सकता है। 11 मई की एक खबर दिखाता हूं, इसी 11 मई की। उससे पता चलेगा कि सरकार 3-4 दिन पहले क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी। एक दिन हार कर आपको गोबर से स्नान करना ही पड़ेगा, लिख लीजिए। आप गोबर का चाहे जितना मजाक उड़ा लें, आपकी नियति में गोबर ही है, यह भी लिख लीजिए। यह इंडियन एक्सप्रेस के प्रभा राघवन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में NTAGI नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सदस्य डॉक्टर NK अरोड़ा का बयान है इसमें कि इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है कि 8 सप्ताह से आगे बढ़ाने पर दूसरा टीका असरदार होगा। 11 मई की छपी इस खबर के मुताबिक डॉक्टर NK अरोड़ा कह रहे हैं कि भारत में टीके की कोई कमी नहीं है। सोचिए, टास्क फोर्स सुझाव दे रहा है कि कोविशील्ड का दूसरा टीका 3 महीने के अंतराल पर लिया जा सकता है। इसके वैज्ञानिक आधार हैं, लेकिन जिस समूह को मंजूरी देनी है उसके सदस्य का कहना है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। प्रभा की इस रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखा है कि अगर 8 सप्ताह से आगे दूसरा टीका लिया जाए तो उसका असर नहीं होगा। 22 मार्च को स्वास्थ्य सचिव राज्यों को पत्र लिख रहे हैं कि कोविशील्ड का दूसरा टीका 8 सप्ताह बाद लेने से असर नहीं करेगा। उसी दिन सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कह रहे हैं, अखबार में छपा है, कि 4-8 सप्ताह के बीच ही दूसरा डोज देना बेहतर होगा। अब आप इंतजार कीजिए और आप देखेंगे कि फैसला हो जाने पर राजेश भूषण से लेकर तमाम एक्सपर्ट इस फैसले को महान और वैज्ञानिक आधार पर बताएंगे और कहेंगे कि 3 महीने बाद तक लिया जा सकता है। इस साल के फरवरी महीने में ही मेडिकल रिसर्च की प्रतिष्ठित पत्रिका द लैंसेट ने एक विश्लेषण छापा था कि कोविशील्ड का दूसरा टीका तब और बेहतर काम करता है जब 12 हफ्ते के अंतर पर दिया जाए। WHO ने भी 8 से 12 सप्ताह करने का सुझाव दिया था। लेकिन मार्च के आखिर में कमेटी फैसला लेती है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज का अंतराल 4 से 6 सप्ताह से बढ़ाकर 4 से 8 हफ्ता कर दिया गया है। 12 सप्ताह की जगह 8 सप्ताह का अंतर क्यों रखा गया यह हम नहीं बता सकते। ठीक उसी तरह से जैसे आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अप्रैल और मई में कोविड से कितने लोग भारत में मरे। आज 12 सप्ताह से लेकर 16 सप्ताह तक कर दिया गया। कोवैक्सीन के दूसरे टीके का अंतराल जो पहले से था वही रहेगा। ब्रिटेन में 12 सप्ताह के अंतराल पर एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड दूसरा टीका दिया जाता है और कनाडा में 16 सप्ताह के अंतर पर। कोवैक्सीन का दूसरा डोज बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। कोवैक्सीन के दूसरे डोज का समय नहीं बढ़ाया गया है। वैक्सीन को लेकर आप अगर पिछले 1 साल के दौरान बयान और फैसले की हालत देखेंगे तो चक्कर खा जाएंगे। गनीमत है कि गोबर के मामले में इस तरह से नहीं होता है। सबसे पहले दूसरे डोज के लिए 4 हफ्ता, फिर 6 से 8 हफ्ता और अब 12 से 16 हफ्ता। क्या इसलिए कि हमारे पास पात्र लोगों को दूसरा टीका देने के लिए टीका नहीं है या पेशेवर वैज्ञानिक सलाह के आधार पर लिया गया फैसला है? क्या हम मोदी सरकार से कुछ पारदर्शिता की उम्मीद कर सकते हैं? ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट है। जयराम रमेश अभी भी सरकार से पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं, काफी समय है उनके पास। पिछले साल मई जून में जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर देने में लगे थे, तब भारत क्या कर रहा था? केंद्र सरकार क्या कर रही थी? क्या भारत ने उन देशों की तरह कोई ऑर्डर दिया? किस वैज्ञानिक आधार पर नहीं दिया? अब क्यों जब इतने सारे लोग अप्रैल और मई में मर गए और तड़पा तड़पा कर मार दिए गए, तब जाकर ग्लोबल टेंडर की बात हो रही है, वो भी राज्य सरकारें निकाल रही हैं जो केंद्र को निकालना चाहिए था। पिछले साल ही इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक राज्य जैसे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाले और अन्य राज्य भी ग्लोबल टेंडर की तैयारी में। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने रूस में बना टीका स्पुतनिक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। 8 अक्टूबर की खबर है रॉयटर्स की। इस साल अप्रैल में स्पुतनिक को मंजूरी दे दी गई। अक्टूबर में एक्सपर्ट पैनल कहता है कि स्पुतनिक का डेटा नहीं है, जबकि जनवरी में सरकार आधे अधूरे डेटा के आधार पर ही कोवैक्सीन को मंजूरी दे देती है। जब दूसरी लहर आई और हाहाकार मच गया, चारों तरफ से लोग मरने लगे और तड़पा तड़पा कर मारे जाने लगे, तब 12 अप्रैल को स्पुतनिक को मंजूरी दी जाती है। उसके पहले डॉक्टर रेड्डी ने आपात स्थिति में स्पुतनिक के लिए मंजूरी मांगी थी और भारत में ट्रायल के किसी चरण के पूरा होने की बात कही थी। रूस में स्पुतनिक को लेकर काफी विरोध है, वैसे कई देशों में मंजूरी भी है इसे। गार्डियन में एक सर्वे छपा है कि बड़ी संख्या में लोग रूस में नहीं लगाना चाहते हैं। ब्राजील ने तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और स्पुतनिक को बैन कर दिया है कि यह सुरक्षित नहीं है। यही हाल फाइजर को लेकर हुआ। पहले मंजूरी नहीं दी गई, बाद में दे दी गई। अब तो मंजूरी के बाद भी उसके पंजीकरण का कोई अता पता नहीं चल रहा है। गोबर के साथ ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। दूसरे डोज के इंतजार वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रिश्तेदारों के ग्रुप में चैट कर सकते हैं कि 3 महीना ठीक रहेगा कि 2 महीना। कोवैक्सीन वाले परेशान होंगे कि उनका तो टाइम भी नहीं बढ़ाया गया और टीका भी नहीं मिल रहा है।
7 तारीख को फर्स्ट डोज के लिए हम वैक्सीन के लिए गए थे। वहां जाने के बाद बहुत भीड़ थी। उस भीड़ के अंदर भी हम लोग काफी तक इंतजार किए। 1 घंटे के बाद हमारा नंबर आया है। नंबर आने के बाद हमको इंजेक्शन दिया गया है। उसके बाद फिर हमको कहा है कि 28 दिन के बाद आने के लिए कहा है। फिर हम 28 दिन के बाद, तो 5 मई से लेकर आज तक हम 2-3 बार जाकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं है नहीं है। तो अभी ये सरकार कब सप्लाई करेगी और कब हम लोगों को देगी, इसका कोई अंदाजा नहीं आ रहा है। इसलिए हमको डर लग रहा है कि पहला डोज कहीं वेस्ट न जाए।
अब आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। ले ही जा रहा था तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह का गेम हो रहा था। इतने तरह के बयान और दावे और छवियां बनाई गईं कि आप उनसे शानदार हेडलाइन तो बना सकते हैं लेकिन हकीकत का पता नहीं लगा सकते। इस साल 5 जनवरी को भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। कहा गया कि पहले हेल्थ वर्कर को टीका दिया जाएगा। अभी तक हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का भी पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है। वैक्सीन के ऊपर भारत सरकार ने कितना खर्च किया है, इस सवाल का जवाब जरूरी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर इस तरह से इशारे किए गए जैसे सरकार के पैसे से रिसर्च हो रहा है और उत्पादन हो रहा है। पिछले साल 28 नवंबर को प्रधानमंत्री पुणे जाते हैं और सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करते हैं, फिर आंध्र प्रदेश जाते हैं और भारत बायोटेक का दौरा करते हैं। इससे संदेश तो गया ही होगा कि उनके ही नेतृत्व में टीका बन रहा है। यही नहीं, जब आपको टीका लगता है तो एक प्रमाण पत्र मिलता है जिस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है। नेता अपने बयानों में ऐसे बोलते हैं जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और भारत सरकार के पैसे से टीके पर रिसर्च हो रहा है और उत्पादन हो रहा है। इस साल 2 अप्रैल को गार्डियन अखबार में खबर छपती है कि एक तरफ जहां पश्चिम की सरकारें टीके के विकास में अरबों डॉलर लगा रही थी, वहीं इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को एक नया पैसा फंड में दिया हो। लेकिन सरकार ने दुनिया को टीका भेजकर अपनी वाहवाही की तस्वीरें खिंचाने में कोई कमी नहीं की। शब्दशः अनुवाद नहीं है रिपोर्ट का, लेकिन मतलब यही है। अखबार के अनुसार इसका रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका का है, लेकिन इस तरह से फोटोबाजी हो रही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी और भारत ने ही इसकी खोज की हो। सोचिए किस तरह की छवि बन रही है दुनिया में हमारी। गार्डियन एक और रिपोर्ट में यह भी लिखता है कि जब महामारी शुरू हुई तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता था, लेकिन जल्दी ही अमेरिका और चीन भारत से आगे निकल गए। हम हेडलाइन बनाने में बिजी रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, अब छप रहा है कि टीका नहीं होने के कारण टीका केंद्र बंद हो रहे हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि भारत ने टीका के निर्माण की प्रक्रिया में कितना पैसा खर्च किया, क्योंकि बताया तो यही जाता है या आपको लगता है मीडिया ने आगे बता दिया कि भारत ने विकसित किया है। इस तरह से बताया जाता है कि भारतीय कंपनियों और भारत सरकार का फर्क मिट जाता है। 2 अप्रैल की गार्डियन की खबर कि भारत ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन 11 मई की बात बताता हूं। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहती है कि उसने टीके के विकास में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। साफ साफ लिखा है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड के रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार की सरकारी सहायता या ग्रांट मदद नहीं दी गई थी। बताइए, स्वदेशी वैक्सीन को भी फंड नहीं दिया गया। लिखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट को क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी कोई फंड नहीं दिया गया, एक नया पैसा नहीं, बल्कि क्लिनिकल ट्रायल की 14 साइट को फंड दे दिए गए थे। यही हाल भारत बायोटेक का रहा, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में 46 करोड़ की मदद ICMR ने की है। इसका मतलब है 2 अप्रैल की गार्डियन की खबर सही थी कि भारत सरकार ने टीके के उत्पादन में, कोविशील्ड के टीके के उत्पादन में एक नया पैसा खर्च नहीं किया, दूसरे के पैसे से बने टीके पर अपना फोटो चिपकाकर छवि बनाई गई। तो फिर पिछले साल की वो खबर क्या थी जब 13 मई 2020 को इस बात का ऐलान किया गया कि भारत में जो वैक्सीन कैंडिडेट हैं, यानी जो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं, उन्हें 100 करोड़ की मदद दी जाएगी। कोर्ट में तो 46 करोड़ बता रहे हैं। उसी समय के आसपास अमेरिका 300 मिलियन डोज का एडवांस ऑर्डर दे रहा था। हम 100 करोड़ का सपोर्ट कर रहे थे। जब टीका नहीं बना था तब अमेरिका ने मई में ही 40 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया। अमेरिका ने तो अलग अलग कंपनियों में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश कर दिए। भारत क्या कर रहा था, भारत आज क्या कर रहा है, सुना देता हूं।
अवर रफ एस्टिमेट एंड टारगेट वुड बी टू रिसीव एंड यूटिलाइज 400 to 500 million डोजेज कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 करोड़ पीपल by July 2021. All this is still under various stages of finalization.
तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि टीका बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों को एक नया पैसा नहीं दिया, तो फिर वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर पैसे देने की खबरें क्या थी, किसे मिला पैसा? जो 12 नवंबर 2020 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के टीके पर रिसर्च और विकास के लिए 900 करोड़ की मदद राशि का ऐलान किया है। यह फंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया है और इस योजना का नाम है कोविड सुरक्षा मिशन फॉर रिसर्च। यह 900 करोड़ किसे दिया गया जो हलफनामा में सरकार को कहना पड़ा कि एक नया पैसा खर्च नहीं किया? पिछले साल 26 सितंबर को अडर पूनावाला ट्वीट करते हैं कि क्या भारत सरकार के पास अगले एक साल के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए तभी हर भारतीय को टीका दिया जा सकेगा। हमें भारत के टीका निर्माताओं और विदेशी निर्माताओं से बात कर योजना बनानी होगी, पूनावाला कहते हैं। इस साल 20 अप्रैल की खबर देखिए। वित्त मंत्रालय ने टीका उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माता कंपनियों को उधार देने का निर्णय लिया। भारत बायोटेक को 1500 करोड़, सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ उधार दिए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में उधार देने की ही बात कही है। तो क्या 900 करोड़ या 4,500 करोड़ यह सब केवल हेडलाइन के लिए थे? 21 अप्रैल को अडर पूनावाला हमारे सहयोगी विष्णु सोम से कहते हैं कि खबरों में हम ये सब देखते ही रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह फंड जल्दी आ जाए, लेकिन हमने बैंक से लोन ले लिया है इस उम्मीद पर कि ये पैसा हम तक बहुत जल्दी पहुंचेगा।
The 3000 crore amount we keep seeing in the media has been sanctioned and we believe it will come to us very soon. We have not waited but borrowed from the banks to get on with the ramp up with the assumption that this funding from the government will reach us very soon this week.
मीडिया की खबरों के अनुसार कुछ पैसा इस कंपनियों के पास उधार का पैसा पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने कोर्ट में क्यों कहा कि एक नया पैसा नहीं दिया गया है? वैसे भी इन कंपनियों को मदद अब दी जा रही है, क्या पहले देने से नुकसान हो जाता? तो आपने जान लिया कि इन कंपनियों ने जो टीके बनाए हैं उसमें भारत सरकार का एक नया पैसा नहीं लगा है। अब एक और गेम जान लीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पूनावाला राज्यों को टीका 300 का दे रहे हैं और केंद्र सरकार को 150 में दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत के राज्य किसी दूसरे देश के हैं। वही टीका है जिसे राज्य महंगे दामों पर खरीद रहे हैं और केंद्र सस्ते में खरीद रहा है। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि क्यों ना केंद्र सरकार ही टीका खरीदे और राज्यों को दे दे 150 रुपए में। अगर गोबर दिमाग में कोई हलचल पैदा नहीं होने दे रहा है तो आप रो तो सकते ही हैं इस हिसाब पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार हम अभी तक 2.7% लोगों को ही दोनों टीके लगा पा रहे हैं, लेकिन हेडलाइन छप रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। अभी भी वास्तविकता स्वीकार करने के बजाय बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ताकि हेडलाइन मोटे अक्षरों में छप सके। उधर जनवरी में टीके को मंजूरी देने के बाद विदेशी मदद और निर्यात के नाम पर छवि निर्माण का काम शुरू हो जाता है। आए दिन ट्वीट होने लगता है कि भारत में बना टीका यहां पहुंच रहा है, वहां पहुंच रहा है। भारत के लोगों के लिए कितना पहुंच रहा है और कहां पहुंच रहा है इसकी तस्वीरें पीछे रह गई। अलग अलग देशों में पहुंच रहे टीके के डब्बे का फोटो गांव गांव तक गोदी मीडिया के जरिए पहुंचाया गया कि भारत का बड़ा नाम हो रहा है, विश्व गुरु बन गया है। जनवरी के मन की बात में प्रधानमंत्री गर्व से बता रहे हैं कि भारत टीके का निर्यात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है। आत्मनिर्भर का मतलब तो यही होता है कि अपने लोगों को टीका दे दिया जाए और बचे तो दूसरों को भी दिया जाए। अब हालत यह है कि राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। 4 महीने के भीतर भारत के राज्य टीका खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने जा रहे हैं ताकि बाहर से मंगा सके। आत्मनिर्भर भारत के पास है नहीं, आत्मनिर्भर का नारा गायब हो चुका है। यह नारा कई महीनों तक हेडलाइन बनता रहा, अब इसका काम हो गया है, नया कोई नारा आ जाएगा, क्योंकि हम छवि बना रहे थे, हम छवि ही बनाते रह जाएंगे, आपके लोग मर जाएंगे या तड़पा तड़पा कर मार दिए जाएंगे। इस चक्कर में भारतीय भी भूल गए कि जो टीका बाहर जा रहा है वो उन्हें लग सकता था और उनकी जान बच सकती थी। प्रोपेगेंडा का यह असर होता है। यही नहीं, हमने दुनिया को बार बार जताया, दिखाया, बताया और भारत ने भी दिखाया कि देखो किस किस देश में टीके का डब्बा पहुंचा है। हर देश के हवाई अड्डे से टीके के उतरते वक्त की तस्वीरें ट्वीट की गईं। वैसे भारतीय संस्कृति तो यही है कि किसी को देकर ज्यादा गाना नहीं गाया जाता है। 4 महीने के भीतर गाना बदल गया है। अब दुनिया भर से भारत के मदद के लिए डब्बे और हवाई जहाज की तस्वीरें आने लगी। हमारी सारी तैयारी की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। सिर्फ गोबर ही है जो हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। गोबर के लिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। फ्लैशबैक में जाकर यह देखना बहुत जरूरी है कि पिछले 1 साल से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है। इस मार्च में भारत सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से टीके के उत्पादन के लिए आर्थिक मदद मांगने लगती है। 12 दिसंबर 2020 को रॉयटर्स से एक इंटरव्यू में टीका प्रशासन के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कहते हैं कि सरकार ने पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है। 6 से 8 महीने में 30 करोड़ को टीका दिया जा सकेगा। हालत यह है कि 5 महीने में हम आधे आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। 17 करोड़ को ही कुल दिया गया है, उसमें भी पहले डोज वालों की संख्या ज्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर देखिए, 10 मई की है। इसके अनुसार जितने लोगों ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराया है और जितने लोगों को टीका मिल रहा है उसमें काफी अंतर है और यह अंतर हर दिन बढ़ता जा रहा है। 1 से 7 मई के बीच 2.42 करोड़ लोगों ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराया। 1 से 7 मई के दौरान हर दिन औसतन 16.6 डोज ही दिए गए, जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते में 40 लाख डोज हर दिन दिए जा रहे थे। जिन लोगों ने पंजीकरण कराए हैं उन्हीं का टीका पूरा होने में 3 महीने लग जाएंगे। जरूर इस रिपोर्ट में आंकड़े ज्यादा थे, तारीखें ज्यादा थी, लेकिन इससे आपको गुजरना ही था ताकि आप जान सके कि टीकाकरण को लेकर क्या हुआ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बताया जा रहा है। दिल्ली में 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बन रहा है, नई संसद बन रही है। इसे लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इतना पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि छत्तीसगढ़ में भी तो कांग्रेस सरकार नया विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री निवास, राजभवन बनवा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण पर रोक लगा दी है, कहा है कि यह पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होगा। मेरी राय में स्वास्थ्य का सारा पैसा सेंट्रल विस्ता पर खर्च होना चाहिए। इतने लोग तड़प तड़प कर मार दिए गए, तड़पा तड़पा कर, ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर के बिना, इंजेक्शन के बिना, अब क्या फायदा? बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम ही सेंट्रल विस्ता मंत्रालय कर देना चाहिए। ब्रेक ले लीजिए। कोरोना को लेकर देश के गांवों से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। जब शहरों में इंतजाम नहीं तो गांवों को लेकर अनुमान भी क्या लगाना। मनीष कुमार कैमूर के एक गांव में गए हैं, कुछ ही दिनों के अंतराल पर वहां कई लोगों की मौत हो गई है और इस तरह की सूचना कई गांवों से मिल रही है कि कुछ दिन के अंतर 20 लोग चले गए, 30 लोग चले गए, 40 लोग चले गए।
ये कैमूर के बामोर खास गांव के लोगों का दुख दर्द है। गांव के लोग बताते हैं पिछले 25 दिन में 34 लोगों की मौत हुई है। लोगों का कहना है शुरुआत में कोरोना के लक्षण पर टाइफाइड की दवा दी जा रही है।
हमारे पिताजी का जो बुखार है तो बुखार की दवाई कर रहे थे, जांच करवाए तो डॉक्टर साहब ने टाइफाइड बताए, उसी का दवा चल रहा था। बुखार में जो 1-2-4 दिन तक दवाई चला, इसके बाद जो है कि इतना जिट कर गए।
और माँ का तबीयत खराब था, ले गए अस्पताल में, अन्नासी में दवाई भी रोकुल कराए, उसका सांस जम है, सांस का कमी से कफ जम गया, इसलिए उसको मृत्यु हो गया।
कोरोना लेकिन निकला था,
जांच कराया था वहाँ, तो अब जांचा नहीं मिला तो क्या हम बताएं कोरोना निकला था कि नहीं निकला था।
अब हम लोग को तो लग रहा है सर, जब सुई लिए पर दूसरा डोज तो उसी समय डॉक्टर को जांच करना चाहिए था कि इनका कोरोना है कि क्या है कैसे, तब तो सुई लगाना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर लोग सरकारी लोग वैसे ही हैं, सीधे सुई दे देते हैं।
इतना कम समय में इतना मौत कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ ऐसा।
तो आप लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण है या
हाँ हम लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण ही है।
गांव में कामता कांड पांडे जैसे कई लोग मिले जिनकी कहानी बताती है कि लोगों के इलाज में जमकर लापरवाही हो रही है।
फर्स्ट में मुझे मलेरिया हुआ, इसके बाद टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड से फिर कोविड का शिकायत आ गया था।
अच्छा,
फिर यहाँ पे बेहोश हो गया मैं, फिर मोनिया गया तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा, 36 घंटे रहा था, इसके बाद रिकवर होने के बाद आया।
गांव में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है।
कोरोना का ही लक्षण यहाँ तो दिखाई दे रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ भी नहीं है, यहाँ न डॉक्टर है, ताला जड़ा हुआ है उसमें।
अभी गांव में क्या स्थिति है, लोग बीमार हैं?
अभी बीमार हैं, लगभग 70% आदमी का यहाँ बुखार चल रहा है और खांसी।
इलाज उलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है?
कहाँ इलाज हो रहा है, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं गांव स्तर से छोटे मोटे डॉक्टर, मोहनिया का स्थिति है सरकारी अस्पताल पर ऑक्सीजन भी नहीं है, जिसका भी घट रहा है तो ऑक्सीजन लेवल घट रहा है।
अधिकांश लोगों का यही कहना है कि इलाज का अभाव है और गांव में अभी भी 70% से अधिक लोगों के कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन चूंकि जांच की कोई व्यवस्था नहीं है तो या तो लोग अपने से खुद इलाज कर रहे हैं या वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी दवा चलती है अधिकांश समय में टाइफाइड की दवा दी जाती है। और जिसके कारण लोगों की मौत, अधिकांश लोगों की मौत में एक चीज सामान्य है कि ऑक्सीजन का अभाव या ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया।
सरकार कह रही है कि फिलहाल मामलों में कमी आ रही है और वो अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन हकीकत में गांव में स्थिति बद से बदतर हो रही है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, कैमूर से एनडीटीवी इंडिया के लिए।